सुधीजनों देवियों, हम पिछले दिसंबर के महीने से जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे, भक्ति के ऊपर, पिछले रविवार को हमने स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस के ऊपर चर्चा की, तो वो विषय रह गया था। आज उसको हम कंक्लूड करेंगे, भक्ति का वो जो जो जो, जो श्रृंखला चल रही थी। और अगले रविवार से हम एक नया ग्रंथ शुरू कर रहे हैं, ईशावास्योपनिषद, जिसको ईशोपनिषद कहते हैं। अगले रविवार से ईशोपनिषद के सिर्फ 18 मंत्र हैं, पर वो इतने अद्भुत, इतने दार्शनिक, इतने फिलोसॉफिकल, इतने इतने डीप नॉलेजेबल उपनिषद है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छा ज्ञान मिलेगा जब हम उपनिषद की, ईशोपनिषद की चर्चा करेंगे। आज हम जिस भक्ति की ऊपर चर्चा चल रही थी, उसके हम कंक्लूड करेंगे। जैसे हमने सुना कि भक्ति का अर्थ होता है परम प्रेम। जब व्यक्ति पूरी तरह अपने आप को सौंप देता है, बिना किसी चाहत के, बिना किसी इच्छा से, बिना किसी एक्सपेक्टेशन से, तब वो परम प्रेम होता है। जब प्यार में कुछ लेने देने की भावना हो, जब एक्सपेक्टेशन छुपा हुआ हो, वो फिर नॉर्मल प्यार होता है, जो एक तरह के सौदा होता है, जिसमें एक्सचेंज भरा होता है। जब प्यार में कुछ देन लेने के लिए इच्छा ना हो, सिर्फ अपने आप को कुर्बान करने के लिए, देने के लिए तैयारी होती है, उसे हम परम प्रेम, और वही भक्ति है। महर्षि नारद भक्ति को इस तरह की व्याख्या करते हैं। उस भक्ति की हमने चर्चा की कि तीन तीन पिलर होते हैं। एक होता है स्तुति। अगली स्लाइड में स्तुति का अर्थ होता है जब हम ग्लोरीफाई करते हैं किसी के भी, आप अपने मित्रों की करें, पिता माता की करें, देश की करें, जब भी जिसकी भी आप ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उसके गुणों की महिमा का गान करते हैं, वो स्तुति है। इसी तरह ईश्वर के, परमात्मा के, प्रभु के जब गुणगान करते हैं, उसे हम स्तुति कहते हैं। उसका लाभ क्या है, हमने सुना। भक्ति से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता है, परमात्मा कोई दुखी बैठा हुआ नहीं है, परमात्मा कोई हमारे आपके तरह चापलूसी पसंद व्यक्ति नहीं है, जिसको तारीफ करने से वो खुश होता हो, जिसको प्रसाद देने पर वो उसका भूख मिटता हो, वो कोई गरीब नहीं है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है कि नारियल देने पर वो खुश होगा, मंत्र बोलने पर वो खुश होकर के आशीर्वाद देगा। भक्ति से, प्रार्थना से ईश्वर अगर हमें फल देने लगे, तो उससे ज्यादा बेईमान कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे रूल्स को, सारे नियम्स को तोड़ना पड़ेगा। चोर भी प्रार्थना करता है, पुलिस भी प्रार्थना करती है, गंदे आदमी भी प्रार्थना करते हैं, अच्छे आदमी भी प्रार्थना करते हैं। जिसकी भक्ति जितनी तेज, ईश्वर उसको उतना फल देने का सिद्धांत अगर आप और हम मान ले, तो उससे बेईमान ईश्वर दुनिया में हो ही नहीं सकता। वो बड़ा खतरनाक ईश्वर होगा, क्योंकि आप कितने भी पाप करो, कितनी बुराई करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पूजा करो, पाठ करो, ईश्वर आपको माफ कर देगा, क्योंकि ईश्वर को आप प्रशंसा करते हैं। जैसे हमारे यहाँ नेताओं की, बड़े बड़े लोगों की, आप चाटुकारिता करो, उनकी तारीफ करो, झूठे सच्चे तारीफ करो, नेता खुश हो जाता है। क्या ईश्वर इसी तरह का कोई व्यक्ति है जो पूरे संसार को चलाता है, जो भूखा बैठा हुआ है, जो तारीफ सुनकर खुश होता है? अगर भक्ति से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता, ईश्वर जो अनंत काल से हमेशा प्रसन्न है, उसको दुख करने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर भक्ति क्यों करें, ये प्रशंसा क्यों करें, उसके गुणगान क्यों करें? तो उसकी चर्चाएं हमने पहले सुनी। स्तुति करने से जो पहला फल होता है कि आपको, जिस व्यक्ति की आप प्रशंसा करते हैं, उसके प्रति प्रेम आपका अपने आप बढ़ने लगता है, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। इसी तरह जब हम ईश्वर के गुणगान करते हैं, ईश्वर के स्तुतियां करते हैं, तो धीरे धीरे ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम बढ़ने लगता है। ईश्वर का प्रेम हमारे प्रति नहीं बढ़ता, ईश्वर तो हमेशा हमें प्रेम करता है, हम ही उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उससे प्यार नहीं करते। स्तुतियों से, प्रशंसा से प्यार बढ़ने लगता है। दूसरा फल जो हमने स्तुति की चर्चा की, इससे अपने जीवन में रिफॉर्मेशन होने लगता है। जिसका भी आप फैन है, जिसके भी आप प्रशंसक हैं, जिसके भी आप गुणगान करते हैं, तो आप, आपके अनजाने में आप यही सोच के करते हैं कि काश मैं भी ऐसा ही होता। जब किसी फिल्म स्टार का कोई बच्चा फैन होता है, उसका प्रशंसक होता है, उसी की तरह बाल करने लगता है, उसी की तरह कपड़े पहनने लगता है, तो मन में यही भावना छुपी होती, काश मैं भी ऐसे ही होने लगता। वो उसी तरह बनने की कोशिश करता है, उस खिलाड़ी की तरह, उस एक्टर की तरह, उस महापुरुष की तरह, उस साधु की तरह। तो जब हम ईश्वर की प्रशंसा करने लगते हैं, उनके गुणों की चर्चा करते हैं, तो हमारे अंदर भी वही भावना पैदा होती है, काश मैं भी उसी तरह हूं, और उसी तरह की कोशिश करने लगता है व्यक्ति, तो जीवन में रिफॉर्मेशन होने लगता है। तीसरा फल था स्तुति का, ये जो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड पैदा होता है जब हमारे ऊपर कोई एहसान करता है, कोई हमारे लिए कुछ करता है, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करें, कृतज्ञता व्यक्त करें, वो हमारे अंदर उसके प्रति वो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड रहो। उससे उस व्यक्ति को फायदा नहीं है, उस व्यक्ति को खुश होने का नहीं है, हमारा दिल निर्मल होता है, हम ज़्यादा अच्छे बनते हैं, अच्छा पवित्र बनते हैं। तो स्तुति के इन फलों की हमने चर्चाएं की। अगली स्लाइड चलाएं। तो भक्ति का जो दूसरा खंभा है, जो दूसरा पिलर है, जो भक्ति एक प्रार्थना, प्रेयर करना, कुछ मांगना, ईश्वर को मांगने से ईश्वर अगर देने लगे तो हर रोज रात को चोर मांगता है कि हे भगवान आज मेरा रात ठीक ठीक गुजारा दो। आपको पता है जितने बड़े बड़े डाकू हैं, सब जब डाकू डालने डाकागिरी डालने चलते हैं तो मंदिर होकर जालते हैं, माता के मंदिर लंबे से सिंदूर का तिलक लगा के निकलते हैं, माता जी आज ठीक ठाक सब हो जाए तो आकर एक मुर्गा चढ़ाऊंगा। पुलिस बिचारी परेशान है, सरकार से आर्डर पड़ता है, पुलिस भी रात को चलती है तो माता जी को निवेदन करके चलती है, एक डाकू तो पकड़ा दो, चोर पकड़ा दो, 4 साल से प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो आप अगर कहेंगे आपकी भक्ति के प्रबल होने से ईश्वर खुश होता है, डाकू ने थोड़ी अच्छी भक्ति कर दी, भगवान ने कहा जा जितना मर्जी डाका डालो, क्या आप ऐसे भगवान को अपने घर में भी घुसने दोगे? प्रार्थना इससे ईश्वर ना खुश होता है ना दुखी होता है। फिर क्या, जैसे स्तुति का अपना फल होता है, प्रार्थना का अपना फल होता है। पहला फल हमने चर्चा की, पिछले बार चर्चा की थी कि प्रार्थना से व्यक्ति का अहंकार टूटता है, क्योंकि व्यक्ति मांगता तभी है जब वो समझता है कि मैं कमजोर हूं, मैं असहाय हूं। जब भी आप पैसा मांगते हैं तो पहले आप ये सोच लेते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। जब आप ज्ञान मांगने जाते हैं तो आप अज्ञानी है ये मानकर जाते हैं। जब भी आप अपनी कमी को एक्सेप्ट करते हैं तभी आप मांगने निकलते हैं। जब भी आप ईश्वर से मांगने निकलते हैं इस भावना के साथ आप निकलते हैं कि मेरे पास नहीं है, मैं असहाय हूं। ये जो असहायता की फीलिंग है ईश्वर के सामने, वो व्यक्ति का अहंकार को तोड़ता है, घमंड को तोड़ता है, उसके एरोगेंसी को तोड़ता है। तो भक्ति का जो पहला फल होता है प्रार्थना का, कि इंसान का घमंड टूटना चाहिए। अगर भक्ति से घमंड नहीं टूट रहा, अहंकार नहीं टूट रहा, तो नकली भक्ति बढ़ रही है। तो प्रार्थना का जो दूसरा फल हमने चर्चा की कि विचारों का जो घनीभूत होता है, जो इंटेंसिटी ऑफ थॉट है, जो विचार घनीभूत होते हैं तभी प्रार्थना निकलती है। अगर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जैसे आप गायत्री मंत्र में प्रार्थना करते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्, हे ईश्वर हमारी बुद्धि को आप तेज बनाओ, पर हमारी बुद्धि तेज नहीं होती है। गायत्री मंत्र 30 साल से जप रहा हूं तब भी नहीं बुद्धि तेज होती है, इसीलिए कि सचमुच कभी दिल से मैंने ईश्वर से मांगा ही नहीं कि ईश्वर मेरी बुद्धि तेज करो। मैं तो इसीलिए गायत्री मंत्र बोलता हूं क्योंकि सब बोलते हैं तो मुझे भी बोलना होता है, ये इस डर में बोलता हूं कहीं ना बोलो तो कोई पाप ना चढ़ जाए। मुझे बुद्धि की कभी जरूरत रही नहीं ईश्वर से मांगने के लिए, इसीलिए ईश्वर ने कभी आपकी बुद्धि तेज की नहीं है। पर जिस दिन आपको मुझे एहसास हो जाए सचमुच मुझे अपनी बुद्धि को अच्छी करने की जरूरत है, वो तड़प अंदर पैदा हो जाए, तब आप गिड़गिड़ाने लगे हे ईश्वर मेरी बुद्धि को अच्छी बनाओ, उसी दिन बुद्धि अच्छी होगी। जैसे आप अकड़ के किसी से $10 मांगे, वो पैसा तो देगा नहीं, ऊपर थप्पड़ मार के गालियां दे के चला जाएगा। आप $10 मांगेंगे तो आपको झुकना पड़ेगा, आपको विनम्र होना पड़ेगा, आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा, तभी सामने वाला $10 निकाल सकता है। तो ये जो मांगने की जो भावना है, ये तभी होती है जब आपके अंदर उसके डिमांड की इंटेंसिटी हो। अगर नहीं है, सिर्फ ऊपरी उठा और मंत्र बोलते प्रार्थना करते, वो तो फिर हमारा सोशल स्टेटस उससे बनता है कि मैं बड़ा धार्मिक हूं, मैं बड़ा भक्त हूं, पर ईश्वर से मेरा कोई कनेक्शन नहीं बनता। तीसरा फल जो प्रार्थना से होता है, जिसकी हमने चर्चा की, कि प्रार्थना से ईश्वर की कृपा मिलने लगती है। फिर आप मिसअंडरस्टैंड मुझे करने लगेंगे कि अच्छा मतलब प्रार्थना करने पर ईश्वर कृपा करता है, बिल्कुल नहीं करता है। ईश्वर आप और मेरे पर कभी भी एक चवन्नी का जरूरत से ज्यादा कृपा नहीं करता। ईश्वर अनंत काल से अनंत काल तक सब पर कृपा करता है। हम प्रार्थना करने पर उसकी कृपा पाने का लायक बनते हैं। संसार में हजारों नौकरियां हैं, कंपनियों के पास बड़े बड़े पोस्ट खाली पड़े हैं, लाखों डॉलर देने को तैयार बैठे हैं। मैं भी लेने को तैयार बैठा हूं लाखों डॉलर, पर वो मुझे नहीं रखता क्योंकि समझता ये नालायक है पोस्ट के लिए। इसका अर्थ नहीं है कि कंपनी रखना नहीं चाहते हैं, वो देना नहीं चाहते लाखों डॉलर किसी को, पर उनको कोई योग्य चाहिए। ईश्वर की कृपा सब पर हो रही है, हमें अगर नहीं मिल रही कि हमारे अंदर अयोग्यता है, वो नालायकपन है। वो नालायकपन क्या है? हमारा घमंड, हमारा एरोगेंसी, हमारा गर्व। इसीलिए आप देखेंगे दुनिया में जितने भी रिलीजियंस हैं, जितने तरह के ईश्वर को मानने की जितने अलग अलग पद्धतियां हैं, कितने भी उसमें हमारा मत विरोध हो, मन विरोध हो, एक चीज कॉमन आप हर जगह देखेंगे। हर रिलीजियन में यह सिखाया जाता है कि अहंकार पर नियंत्रण रखो ईश्वर को पाने के लिए। ईश्वर और मेरे बीच में जो सबसे बड़ा बाधक है वो अहंकार है। प्रार्थना से जब अहंकार टूटता है, व्यक्ति ईश्वर को पाने के लिए उतना ज्यादा प्योर बनता है, पवित्र बनता है, उतना ज्यादा निर्मल बनता है और वो ईश्वर को पाने लायक बनता है। जैसे हमने पिछले बार इसकी एक कहानी आपको सुनाई थी, महात्मा बुद्ध कहते थे अमृत बरस रहा है, हमेशा बरस रहा है, सब जगह बरस रहा है, पर उनका प्रिय शिष्य आनंद ने एक दिन उनको हड़का कर बोला रूम में, या बोलते रहते हो अमृत बरस रहा है बरस रहा है, मैं आपके साथ साथ इतने सालों से रहता हूं, मुझे तो कभी अमृत का एक बिंदु भी नहीं मिला, अब क्यों बोलते रहते हो अमृत बरस रहा है। महात्मा बुद्ध मुस्कुरा कर बोले, तुम्हें अगर अमृत नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा बर्तन में कोई खोट होगा। अमृत बरसने पर शक मत किया करो। जैसे ह्यूस्टन में चार दिन से बारिश हो रही है पर आपके घर के घड़ा भर नहीं रहा है, इसका अर्थ नहीं कि बारिश नहीं हो रही है। हो सकता है आपके घड़े में छेद हो सकता है आपके घड़े में पहले से सामान भरा हुआ हो सकता है आपका घड़ा उल्टा रखा हो सकता है आपका घड़ा छत के नीचे रखा हो, जिसके कारण कितनी भी बारिश हो घड़ा नहीं भर रहा है। घड़ा नहीं भर रहा है इसका अर्थ नहीं कि बारिश नहीं हो रही है। जिस दिन आप अपने घड़े को सही किया और खुले आसमान में ऊपर की ओर मुंह करके रख दिया, घड़ा उसी समय भर जाता है, फिर आप चिल्लाने लगते हो देखो बारिश हो गई। बारिश अभी नहीं हुई, बारिश तो चार दिन से हो रही थी। आज आप पानी को भरने लायक बने। भक्ति से व्यक्ति ईश्वर की कृपा को पाने लायक बनता है। ईश्वर उस पर विशेष कृपा नहीं करता है, नहीं तो ईश्वर बड़ा बेईमान हो जाएगा अब कर मेरे ऊपर विशेष कृपा करने लग जाए, क्योंकि वो यूनिवर्सल जो रूल जो उसने बनाया उसी के खिलाफ जाएगा। चौथा जो प्रार्थना का फल है, आत्मा में आर्द्रता होती है, सॉफ्टनेस इन योर हार्ट, आपका दिल बड़ा कोमल होता है, सरल होता है। जैसे जैसे आपकी भक्ति प्रबल होगी, जैसे जैसे ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, व्यक्ति इतना पोलाइट होता है, उतना हम्बल होता है, उतना उसका दिल कोमल होता है। अब तो वो चींटी भी पकड़े तो भी उसको लगता है कहीं इसको दर्द ना हो जाए, अब तो हम शेर भी काट के उसको उबाल देते हैं खाने के लिए। पर जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी, चींटी पर हाथ लगाने पर भी आपको डर लगेगा कहीं उसको चोट तो नहीं लगा, क्योंकि उसमें भी वही प्राण है जो मुझ में है, उसमें भी वही आत्मा है जो मुझ में है, उसमें भी वही ईश्वर है जो मुझ में है। भक्ति बढ़ने के साथ साथ सबके प्रति कोमल हृदयता बढ़ती है। प्रार्थना का ये चौथा फल है। स्वामी जी कहते आज जो ये सभी जो बताया आपको मैंने, ये हमने चर्चा कर चुके हैं। आज जो चर्चा का विषय है, भक्ति का जो तीसरा खंभा है, जो थर्ड पिलर है, अगली स्लाइड, वो है उपासना। उपासना का अर्थ होता है कम्युनियन, मतलब ईश्वर के पास बैठना। उसमें दो शब्द है, एक है उप और एक है आसन। उप मतलब नजदीक, नियर, आसन मतलब बैठना, तो सीट। इसी का एक सिनोनिमस वर्ड है हिंदी में व संस्कृत में, उपवास। अब हम लोग बड़े उपवास करते हैं, खास करके महिलाएं बहुत उपवास रखते हैं, यहां तो कम हो गया, भारत में बहुत करते हैं, यहां भी करते होंगे, खास करके करवा चौथ में, जन्माष्टमी में वगैरह वगैरह। अब उपवास क्या है कि हमारे यहां शब्दों का शब्द तो रह गए, वो जैसे कहते ना कपूर तो कहां उड़ गया, अब वो कपड़े रह गए, वही उपवास भी उसी तरह का हो गया। उपवास का जो शुरू हुआ था उसका अर्थ था कि साल में कुछ त्योहारों में, कुछ दिनों में हम ईश्वर के पास बैठने की प्रैक्टिस करें। ईश्वर के पास बैठने का मतलब क्या, मतलब ईश्वर कहीं है, उसके पास चले जाओ, उसके गोद में बैठ जाओ, उसके बगल में बैठ जाओ। ईश्वर कहाँ है? वो तो तुम्हारे दिल में ही है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे बाहर है, वो तुम्हारे रोए रोए में है। वे पास में क्या बैठना, वो हमेशा पास है, पर हमें पास होने का कभी एहसास नहीं हुआ। पास कभी शरीर से नहीं होता है, नजदीकी कभी शरीर से नहीं होता है, नजदीकी हमेशा मन से होता है। सज्जनों देवियों, जब आप बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, या रोड पर गाड़ी भी चलाते हैं, या किसी स्टोर में जाते हैं, सैकड़ों हजारों लोग आपके अगल बगल में आसपास से गुजरते हैं, आपके बगल में बैठे होते हैं। आप जब बस में बैठे हैं, फ्लाइट में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, तो भी आपके बगल में लोग बैठे होते हैं। पर जैसे ही आप सीट पर बैठते हैं, वह घंटों जब आप बैठते हैं, आपकी जो नजदीकी है वो चलता है और कहीं पर, जिसको आप प्यार करते हैं, जिसको आप छोड़ कर आए। आपके पति है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपका बिजनेस है, आपका घर है, आपके पैसे हैं, आपके आपके कुत्ता है, आपकी बिल्ली है। उस बगल वाले बैठने वाले व्यक्ति को तो कभी आप देखे भी नहीं है, 3 घंटे से आपके बगल में बैठा है, कोई आपको नजदीकी का एहसास नहीं हो रहा है। जबकि आपका जो अपना, वो कोई आपके पति पत्नी बच्चे हो सकते हैं, या पैसा, घर, बगीचा, आपका ऑफिस का काम हो सकता है, जो हजारों किलोमीटर माइल दूर आप छोड़ के आए, वो आपके दिमाग में होता है। जब पहली बार आप अपने बच्चे को अपने से अलग करते हैं, वो पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए बाहर जाता है पहली बार, और आप उसको एयरपोर्ट पर छोड़ कर आते हैं, एयरपोर्ट पर खास करके जो माओं को थोड़ी ज्यादा अटैचमेंट होता है, बड़े परेशान होते हैं, दिल में वही बात चलती रहती है, बेटा क्या कर रहा होगा, बेटी क्या कर रही होगी, पहुंचा कब, कहाँ पहुंचा। घर में आए, खाना परोस के बैठ गई है, थाली सामने रखी हुई है, रोटी सब्जी हाथ रखा हुआ है, अब ठंडी हो गई, बाकी लोग खा करके माँ बैठी है, खाना खाओ। अच्छा, थाली नजदीक है, बेटा या बेटी 1000 माइल दूर पहुंच चुके, पर मन में जो उपा उपा उपासना है, जो उपवास है, जो नजदीकीपन है, वो बेटा या बेटी का है, न कि वो खाने का। तभी तो एहसास नहीं हो रहा है कि खाना रखा हुआ। रोज वो सीरियल देखती थी, जो वो सास बहू की ड्रामा देखती थी, पर आज वो सास बहू की ड्रामा आज भी चल रही है, वो आधा घंटा बीत चुका है, नया सीरियल आ चुका है, अब भी मां बैठी हुई है, क्या हुआ पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उपासना कहीं चल रही है, कोई नजदीक है, टीवी से ज्यादा नजदीक। तो मतलब कहने का है कि नजदीकी हमेशा दिल से होता है, शरीर से नहीं होता है, मन में होता है। ईश्वर मेरे अंदर भी है, मेरे बाहर भी है, पर हमें ईश्वर हमेशा दूर ही लगता है, क्योंकि कभी हमने मन में उसको अपना सोचा ही नहीं है। उसके बारे में जितना हम बच्चों के लिए टाइम दिया, जितना टीवी सीरियल के लिए टाइम दिया, जितना हमने पैसे के लिए टाइम दिया, जितना हमने अपने रुतवा के लिए टाइम दिया, जितना हम अपने सोशल स्टेटस के लिए टाइम दिया, उतना कभी टाइम दिया ही नहीं। और जितना टाइम दिया बेमन दिया, पब्लिक में एक अपने स्टेटस बनाने के लिए दिया, सोसाइटी में अपने आप को धार्मिक दिखाने के लिए दिया, देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूं, 3 घंटे पूजा करता हूं, 8 घंटे ध्यान करता हूं, पर सचमुच दिल में कभी वो प्यार हुआ ही नहीं। जैसे हमारे नेता लोग इलेक्शन के समय दावा करते हैं, तुम 100 करोड़ के लोग मेरे अपने होते हो, वो कोई नेता का कोई आदमी अपना होता नहीं है। वैसे ही हम ईश्वर से जब दावा ठोकते हैं, तो पब्लिक को दिखाने के लिए दावा ठोकते हैं, तुम अपने हो। दिल में कभी सच सीरियसली नहीं सोचा कि ईश्वर मेरे पास है, मैं उसके पास हूं। उपासना का अर्थ होता है कि साल में कुछ दिनों निकालो, जहां पर आप ईश्वर के लिए टाइम निकालो, उसको सोचो, याद करो, और अपने दिल में एहसास करो। इसी का नाम है उपवास। अब तो उपवास कल होगी, आज से तैयारी शुरू हो जाती है। अच्छा, वो उपवास करते करते जब जैसे आप अपने बच्चे की याद में सामने वाली थाली को भूल जाते हैं, टीवी में चलते हुए जो 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 प्रोग्राम से उसको आप देख नहीं पाते हैं, इसी तरह जब आप किसी के सोच में डूब जाते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता आप खाना खाए कि ना खाए। उपवास करते समय जब ईश्वर की स्मरण करते हुए, ईश्वर में विलीन होते हुए व्यक्ति खाना पीना भूल जाता है, वो तो गया। अब हम खाना पीना भूलते नहीं है, जिस दिन उपवास है वो सुबह से तैयारी करते हैं कि कब शाम होगी, क्या क्या खाऊंगा। पूरे दिमाग में हमारा जो उपवास चलता है वो खाने के साथ चलता है। उपवास का मतलब नजदीकी, ईश्वर के साथ नहीं, गीता भी पढ़ रहे हैं तो भी 6 कप बजेगा। तो शरीर के उपवास से उपवास नहीं होता है, मन में उपवास होता है। ये उपवास और उपासना एक ही मतलब है, ईश्वर को अपने नजदीक पाना, एहसास करना। जैसे दूर बैठे हुए आप अपने बच्चों को नजदीक एहसास करते हैं दिल में, जैसे दूर छोड़ा हुआ आपका जमीन को आप यही एहसास करते हैं कि मेरा वहां एक जमीन है, प्लॉट है। ये उपासना मतलब नजदीकी, उसको एहसान करना, उसमें डूब जाना, और इसी का नाम ध्यान है। किसी व्यक्ति ने पूछा कि ये ध्यान क्या चीज होता है, आत्मज्ञान क्या चीज होता है, तो आचार्य ने जवाब दिया कि जब मैं खाता हूं तो खाता हूं, जब मैं सोता हूं तो सोता हूं, जब मैं काम करता हूं तो काम करता हूं, यही है ध्यान। बोले ये क्या ध्यान है? बोले ये एकाग्रता है, ये कंसंट्रेशन है, और सदियों से इसी को हम ध्यान कहते हैं। जो भी आप करो, जब आप उसमें तल्लीन हो जाते हो, तल्लीन मतलब जो डूब जाते हो, वो कंसंट्रेशन करते करते जब आप अपने आप को भूल जाते हो, तो वो मेडिटेशन में कब कन्वर्ट हो जाता है ध्यान में आपको पता नहीं चलता। मतलब 100% समर्पण उस काम के प्रति, उस पढ़ाई, जो कुछ भी आप करते हैं, जब आप 100% अपने आप को सरेंडर कर देते हैं तो आप नहीं होते हैं, दैट्स बिकम्स मेडिटेशन। इसी सिद्धांत पर देखिए, अर्जुन ने मछली के आंख में मारा, वो भी वही था। तो ध्यान सिर्फ जब आप ध्यानस्थ होते हैं, आपका मन मेडिटेशन में डूब जाता है, तो आप सामाजिक कार्यों में भी उतने ही तल्लीनता दिखा सकते हैं। और आज लोग तो समस्या ये है कि एक वक्त में कई काम करते हैं, वो भी फटाफट करना होता है, क्योंकि बहुत कुछ अचीव करना है थोड़े समय में, आराम से खा भी नहीं सकते। खा रहे तो टीवी देख रहे हैं, अगर टीवी देख रहे हैं तो और कुछ सोच रहे हैं, पास बैठे आदमी से अगर बात भी कर रहे हैं तो दिमाग में और कोई बात चलता है, फोन में मैसेज कर रहे हैं तो भी बात चल रही है, सोते भी हैं तो शंकाओं के साथ सोते हैं, चिंताओं के साथ सोते हैं, पूजा प्रार्थना भी करते हैं तो ध्यान और कहीं होता है, और अंत में क्या कहते हैं, हे प्रभु मुझे सुख दो, मुझे संतोष दो, मुझे धैर्य दो। पर तू प्रार्थना करते समय तो धैर्य नहीं रखता, तू टीवी देखते समय भी तो नहीं रखता, तू तो खाते समय भी एकाग्र नहीं करता, पर तब भी तुम्हें शांति कहां से मिलेगी? ईश्वर तो फ्री में तो बांटता फिरता रहता है प्रार्थना करके। तो इसीलिए हम जिंदगी भर ईश्वर की भक्ति करते हैं, पर मिलता धैर्य तक भी नहीं मिलता, संतोष शांति तो छोड़िए, क्योंकि हम कहीं भी कंसंट्रेट करने को तैयार नहीं होते हैं। तो उपासना का मतलब होता है कंसंट्रेट करो उस ईश्वर के ऊपर, मेडिटेट करो उस ईश्वर पर, उसको अपने अंदर एहसास करो। वो कोई बाजार में नहीं मिलता, वो कोई आकाश में नहीं है, ईश्वर कोई चौथे आसमान पर नहीं है, ईश्वर कोई सातवें आसमान पर ही नहीं है, ईश्वर कोई खीर सागर में नहीं बैठा है, ईश्वर कोई ब्रह्मलोक में नहीं बैठा है, ईश्वर तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे शत्रु के अंदर है, तुम्हारे जिसको खाते हो उसके अंदर है, जिसको पीते हो उसके अंदर है, जहां बैठते हो उसके अंदर है, तुम्हारे जर्रे जर्रे में हर जगह है। बस ढूंढने की जरूरत है, ध्रुव की तरह आंख चाहिए, प्रहलाद की तरह आंख चाहिए, तो आपको गली गली तो छोड़िए, आपके रोए रोए में ईश्वर दिखने लगेगा। इसका लाभ क्या है, अगली स्लाइड में चलेंगे। उपासना का जो पहला लाभ है, देखिए, मन पवित्र होता है, प्यूरिफाइड होता है। जब आप आग के में एक लकड़ी डालते हैं, लकड़ी में कोई चमक प्रकाश करने की क्षमता नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है शाइन करने की या दूसरों को लाइट देने की, पर जैसे ही वो आग में के नजदीक होता है, वो लकड़ी आग बन जाती है, वो खुद दूसरों को प्रकाश देने लायक बन जाता है। आप जो दिया जलाते हो, वो बत्ती रुई की बत्ती है, उस बत्ती में खुद को प्रकाश करने की क्षमता नहीं, दूसरों को क्या करेगी? पर जैसे ही वो हल्की सी रुई सी बत्ती आग के नजदीक हो जाती है, वो रुई खुद जलता है और दूसरों को रोशनी करने लगता है। उपासना का लाभ देखिए, किसी के नजदीक होने का लाभ, आप अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं तो आप भी अच्छे बन जाते हैं, बुरे लोगों के साथ बैठते हैं तो भी बुरे बन जाते हैं। बच्चे को किसी साइंटिस्ट के पास छोड़ दीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वैसे ही साइंटिस्ट बन जाएगा देखते देखते। बहुत सारे माँ बाप के बच्चे जिस प्रोफेशन में माँ बाप है, बच्चे उसी प्रोफेशन में आ जाते हैं देखते देखते, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। सोनार का बच्चा बढ़िया सोनार बन जाता है। सानिध्य का, ईश्वर की सानिध्य पर होने से हम भी उतने ही निर्मल बनते जाते हैं जैसे ईश्वर निर्मल होता है। अगला जो लाभ होता है उपासना का, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं आत्मशक्ति, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी रखूंगा। एक बार किसी हिमाचल के एक किसी सन्यासी से हमने कहानी सुनी थी। हिमाचल प्रदेश में वो प्रवचन देने गए थे पहाड़ी के एरिया में, और वो बड़े दाढ़ी, बड़े बड़े दाढ़ी और मूंछ वाले जो स्वामी जी लोग होते हैं, बड़े दाढ़ी और मूंछ रखते थे, और वो पैदल चल के वो पहाड़ी के पगडंडियों पर आ रहे थे। पास में एक माँ बैठी हुई थी वो किसी रोड के किनारे पर, और उसका एक छोटा सा बच्चा वहीं पास में उसके आसपास खेल रहा था। जैसे ही एक बाबा को देखा, बड़े बड़े काले काले लंबे लंबे बाल दाढ़ी मूंछ, वो डर के मारे माँ के गोद में चिपक के बैठ गया। तो बाबा बड़े नजदीक आए, बिल्कुल जैसे माँ के नजदीक आए, वो बच्चा माँ के गोद में बैठ करके ऐसे कर रहा है, मारूंगा मारूंगा। सन्यासी थोड़ी देर के लिए रुक गए, वो लिखते हैं अपने आत्मजीवनी, और उनके आंखों में आंसू आने लगा। माँ घबराई, सोचा स्वामी जी को शायद कुछ बदतमीजी कर दिया, कुछ हुआ, क्यों स्वामी जी रो रहे हैं। तो उसने कहा, महाराज आप क्यों नाराज हो गए, क्यों रोने लगे। बोले, नहीं माँ, तुम नहीं जानती हो, ये कोई दुख का आंसू नहीं, खुशी का आंसू है, तुम्हारे बच्चे ने मुझे आज बड़ा दिव्य ज्ञान दे दिया। बोले, क्या। बोले, जो बच्चा अभी थोड़ी देर पहले मुझसे डरता था, और इतना डरता था कि दौड़ के आपको चिपक के बैठ गया, अभी ये 4 सेकेंड में, 5 सेकेंड में, या 30 सेकेंड में क्या परिवर्तन हुआ, क्या बदलाव आया, कि वही बच्चा जो मुझसे डरता था अब इतना हिम्मत है कि अब वो मुझे मारने के लिए हाथ उठाता है। इस 30 सेकेंड में जो बदलाव हुआ, जो चेंज हुआ, वो सिर्फ इतना हुआ, 30 सेकेंड पहले बच्चा मां से दूर था, 30 सेकेंड के बाद बच्चा मां की उपासना में है, उपासना नजदीक है। और आपको पता है, बच्चे के लिए मां दुनिया में सबसे ताकतवर होती है। कितना बड़ा मॉन्स्टर आ जाए, राक्षस आ जाए, उसको पता है मेरी मां बचाएगी। एक कमजोर ताकत वाली मां के पास बैठने पर अगर बच्चे में इतना हिम्मत आता है कि वो किसी को मारने के लिए हाथ उठाता है, तो स्वामी जी लिखते हैं कि मुझे उस दिन ये ज्ञान हुआ कि अगर हमारे अंदर वो ईश्वर की नजदीकी का एहसास हो जाए, जो सर्वशक्तिमान है, हम बोलते हैं कि सारा संसार को बनाने वाला सबसे ज्यादा ताकतवर है, अगर वो ईश्वर मेरे नजदीक हो, ऐसा मुझे एहसास हो, तो दुनिया में बड़े बड़े असंभव काम भी हम कर सकते हैं। इसी को कहते हैं आत्मशक्ति, इच्छा शक्ति, विल पावर। दुनिया में जितने भी लोगों ने बड़े बड़े काम किए, समाज को बदल डाला, संसार को बदल डाला, वो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक नेता हो, वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, जिन्होंने पूरी दुनिया के लीड किया, हमें रास्ता बताया, वो जितने भी बड़े बड़े लीडर हुए, उनमें ज्यादातर कोई ना बड़े घर में पैदा हुए थे, ना बड़ी बड़ी पढ़ाइयां की थी, ना बड़ी बड़ी डिग्रियां ली थी। क्या आपको लगता है वो जो बड़े बड़े महापुरुष हुए, वो किसी खास तरह के उनकी मां ने दवाइयां खाई थी जिनके कारण ये महान बने, और हमारी मां ने नहीं खाई इसीलिए हम ऐसे एवरेज किस्म के लड़के लड़कियां, पुरुष स्त्रियां बनी? नहीं। बहुत सारे महापुरुष तो ऐसे हैं जो हमारे आपसे भी बदतर हालत में पैदा हुए, बदतर हालत में बढ़े, और हमसे कम पढ़ा, कम लिखा, तो भी वो महान बने, सिर्फ इच्छा शक्ति के कारण। हम हमेशा सोचते हैं ये मेरे से नहीं होगा। हमारे पास अगर 5 माइल चलने की एबिलिटी है, हम हमेशा आधी माइल पर ही खत्म कर देते, नहीं उससे आगे मैं चल नहीं सकता। इसीलिए हम एवरेज किस्म के इंसान रहते हैं। और जो सोचता है नहीं मैं तो 500 माइल भी चलने की क्षमता रखता हूं, तो वो राज करता है। वो धनी हो, ज्ञानी हो, राजनीतिक नेता हो, ये जो विल पावर है वो सब में नहीं होता है, पैदाइश भी नहीं होता। जिसमें बचपन से है, अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण से है, बहुत सारे लोग उसको क्रिएट करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। और ईश्वर की भक्ति जब प्रबल होती है तो वो इच्छा शक्ति और मजबूत होती है। आप विरोधी चीजों को, विरोधी शक्तियों को सामना करने के लिए भी आपको ताकत बढ़ता है, क्योंकि जब जेन्युइनली, जब सचमुच आप एहसास करते हैं कि ईश्वर आपके साथ है, तो आप बड़े से बड़े पहाड़ों को तोड़ने की क्षमता रखते हैं। इसी को इच्छा शक्ति कहते हैं। सज्जनों, माताओं, हर इंसान के अंदर वो दिव्यता भरी हुई है, पर हम उसको पहचान नहीं पाते। जैसे हमने एक कहानी सुनी थी, एक शेर का बच्चा अपने जो माँ पिता और माता के साथ जंगल में घूमता था, और अचानक उसको जब प्यास लगा तो वो पानी ढूंढते ढूंढते अपने माँ बाप से अलग हो गया, बहुत दूर चला गया किसी तालाब में पानी पीने के लिए। और वो जब पानी पीने के बाद मुड़ के देखा तो देखा कि उसके पेरेंट्स नहीं थे, शेर शेरनी वहां नहीं थे। अब घबराया, कहां जाए, इधर उधर होने लगा, भटकने लगा। और पास में एक जो भेड़ चराने वाले भेड़ चरा रहा था, उसके सैकड़ों भेड़ थे, और वो भेड़ों के बीच में वो शेर का बच्चा छोटा था, वो उन्हीं के अंदर घुस गया। तो भेड़ चराने वाले को पता नहीं चला कि शेर का बच्चा भी इसके अंदर घुसा हुआ है, तो वो गांव चला गया। भेड़ों के बीच में वो शेर का बच्चा रहने लगा। अगले दिन सुबह जब वो भेड़ों को दोबारा निकाले तो देखा इसमें ये शेर का बच्चा घुसा है। अब छोटा सा बच्चा था, अभी तो वो इतना काटने खाने लायक अभी बना ही नहीं था, तो उसको भी गर्व हुआ, चलो मैंने, अब गांव वालों को पता चलेगा मैं शेर पालता हूं। तो उसने उसको हटाया नहीं। अब रोज सुबह भेड़ों के साथ शेर का बच्चा जाता है, शाम को आता है, शेर के बच्चे को अपने माँ बाप मिले नहीं और उन्हीं के बीच रहने लगता है। ऐसे करते करते सालों बीत गए, शेर का बच्चा बड़ा हुआ, जवान हुआ। अब शेर जब जवान हो तो शेर शेर है, भेड़ भेड़ है, पर अभी भी वो घास खाता है, पानी पीता है और मैं करता है भेड़ों की तरह। गांव वालों को बड़ा आश्चर्य होता है और भेड़ चलाने वाले को बड़ा गर्व होता है, शेर को मैंने भेड़ बना रखा है। एक दिन शेर का वो जवान शेर जो हो चुका है, एक दिन तालाब में पानी पी रहा था। ये ऑटम सीजन था, शरद काल का महीना था, पानी बिल्कुल साफ स्वच्छ था। जब पानी पी रहा था तो उसी समय एक दूसरा शेर आया, उसने बाहर से देखा, ये कमाल की बात है, भेड़ों के बीच में शेर, वो भी मैं करता है, घास खाता है, पानी पीता है। तो उसने सोचा कि मैं इसको सबक सिखाऊं, इसको बताऊं कि तू शेर है, वो क्या कर रहे हो। पर जैसे ही वो शेर को देखा, सारे भेड़ भाग गए तो वो जवान शेर भी भाग गया। कुछ दिन बीतने लगे, शेर ने सोचा कुछ दाल में कुछ काला है, इसको ठीक करने की जरूरत है। तो उसने सोचा कि नहीं, मैं ये शेर को उसके औकात बता कर रहूंगा। एक दिन दोबारा वो पानी पी रहा था तो दूर से खड़े होकर शेर ने बोला कि भागना नहीं, बस एक बात सुन लो, वो पानी में अपना जरा शकल देखो। तो शेर ने अपना शकल देखा, बोला मुड़ के इन भेड़ों को भी देखो। तो भेड़ों को भी देखा, बोला कुछ फर्क पता चलता है, तू मेरे जैसा है, तू मेरे खानदान का है, तू भेड़ नहीं है। अच्छा जगह गरज कर दिखाओ। तो गरजने लगा तो वो मैं निकलने लगा। तो बोला ये तेरी आवाज नहीं है, ये दहाड़ो। उसने कोशिश किया तो शेर आखिर दहाड़ने लगा। जैसे ही शेर दहाड़ा तो पुराने शेर ने बोला, देखा तू शेर है, तू दहाड़ना चाहिए, तुझे इन भेड़ों को खाना चाहिए, तू मैं करता है, भेड़ों के बीच में रहता है, वो भेड़ चराने वाला डंडे से तुमको हांकता है, तुझे शर्म आना चाहिए। तो शेर को जब अपने औकात का पता चला तो बोला, अब जाओ, अपने ये तुम्हारे खाने लायक, इनको खाओ मारो, तू हमारे खानदान का हो। तो शेर दौड़ा और उन्हीं भेड़ों को खाने लगा। ये कहानी कहने का अर्थ होता है कि इंसानों में वही शेरपन है, इंसानियत है, हम भी दहाड़ सकते थे व दहाड़ सकते हैं, पर समस्या है कि भेड़ों के बीच में रहते रहते शेर भी भेड़ बन चुका है, अब दहाड़ने की हिम्मत नहीं रही। कोई दूसरा शेर जब दिखाता है तो फिर हमारा वो विल पावर, इच्छा शक्ति बढ़ती है। कोई दिखाने वाला ना हो तो ईश्वर की भक्ति पर जब प्रबल होती है तो भी हमारे वो आत्मशक्ति बढ़ने लगती है। तो सज्जनों माताओं, भक्ति के जो तीन पिलर्स आपको बताए, स्तुति, प्रार्थना और उपासना, उपासना से इच्छा शक्ति बढ़ती है, व्यक्ति इंसान से, मनुष्य से महामनुष्य बनता है, मानव से महामानव बन सकता है अगर उसकी भक्ति हो। पर दोबारा ध्यान रखिए, ईश्वर आपको महामानव नहीं बनाएगा, आपकी भक्ति आपको महान बनाती है, आपकी भक्ति आपको फल देती है, वो स्तुति आपको फल देगी, वो प्रार्थना आपको फल देगी, वो उपासना आपको फल देगी। पर शर्त है, अगर आप ईमानदारी से करते हैं, अगर आप सचमुच भक्ति करते हैं, अगर पब्लिक को दिखाने के लिए करते हैं, अगर उल्लू बनाने के लिए करते हैं, खुद को उल्लू बनाने के लिए करते हैं, फिर तो आप उल्लू ही बनेंगे ना, हम तो उल्लू ही बनेंगे, तो कोई हमें साथ ना देने वाला। एक छोटी सी कहानी और कह कर के बात को विराम देने के लिए चलूंगा। विवेकानंद स्वामी, विवेकानंद तो विवेकानंद नहीं बने थे, वो नरेंद्र दत्त के नाम से जाने जाते थे, और वो बंगाल के एक मिडिल क्लास फैमिली में थे, उनके पिताजी बड़े पढ़े लिखे थे, और उन दिनों फैशन भी था, जैसे आजकल भी बड़ा फैशन है, जो टीन एज में खास कर फैशन होता है, थोड़ा थोड़ा एथिज्म, मतलब ईश्वर को ना मानने की एक एक जो जो वो एक फैशन है कि भाई मैं ईश्वर, मैं किसी गॉड फॉड को नहीं मानता, ये थोड़ा मॉडर्न दिखाने का भी एक एक तरीका होता है। तो नरेंद्र दत्त में भी उसी तरह का टीन एज का जो जोश था, वो ईश्वर को नहीं मानते थे, बड़ा नास्तिक थे। उनके माँ बाप बड़े परेशान होते थे, घर में बड़े सारे साधु संन्यासियों को बुलाते थे, फिलोसोफर को, प्रोफेसरों को बुलाते थे, डिस्कस करते थे। अब नरेंद्र दत्त हमेशा उनको, जैसे ही कोई माँ बाप भेजते थे वह कहीं जाते थे, तो वो सबसे पहले सवाल पूछते थे, आपने ईश्वर को देखा है? तो फिर क्या दिखाओगे, बंद बंद कर। अब जिसको भी पूछे ईश्वर को देखा है, वो साधु आए, सन्यासी आए, फिलोसफर आए, प्रोफेसर आए, कोई भी आए, किसी ने नहीं देखा, बकवास। तो एक बार उनके मित्रों ने कहा कि देखो, वो गंगा नदी के किनारे एक पागल बाबा बैठते हैं, आप जानते हो, रामकृष्ण परमहंस को बोलते हैं, चलो वहां चलते हैं। एक बार उनको ले गए वहां, तो राजा से ही पहुंचे, रामकृष्ण मुस्कुराने लगे, तो नरेंद्र दत्त ने सबसे पहला सवाल पूछा कि देखिए, आप कुछ बोलने से पहले ये मुझे बताइए, आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण ने बड़े दहाड़ते हुए, हाँ देखा है, बिना किसी सोचे समझे, पहली बार कोई आदमी मिला इतनी जोर से बोलता है, इतने कॉन्फिडेंशियली बोलता है कि मैंने ईश्वर को देखा है, तो आप मुझे दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकता हूं। दूसरा झटका लगा, नहीं दिखा भी सकता है, तो कब दिखाओगे? तो रामकृष्ण ने बोला, आप कब देखना चाहते हो? ना आप जैसे बोलो, मैं तो अभी दिखा सकता हूं। अभी दिखा दोगे? बोले अभी दिखाऊंगा, पर एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? ये गंगा नदी में एक डुबकी लगानी पड़ेगी। अब ये एक डुबकी क्या 100 डुबकी लगा देंगे? पर नहीं, मैं तुम्हें डुबकी लगवाऊंगा। अच्छा ठीक है। रामकृष्ण नरेंद्र दत्त को ले गए, पास में गंगा के किनारे उनका आश्रम था काली कुंदरी, वहां लेकर के गंगा के पानी में, जैसे ही नरेंद्र दत्त विवेकानंद पानी में डूबे, तो रामकृष्ण ने गला पकड़ के वहां दबाए रखा, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, देखा कि आप नहीं, अब अति हो जाएगी, तो छोड़ दिया। बाहर आए नरेंद्र, क्या हुआ? बोले पागल हो सचमुच? अम्मा बोला, अच्छा ठीक है, मैं पागल हूं, मुझे सिर्फ इतना बता, तू पानी के अंदर क्या सोच रहा था? बोले पानी के अंदर सोच रहा था मुझे सांस चाहिए, सांस लेनी है, घुटन हो रही थी, ये सोच रहा होगा पानी तो बहुत पी लिया होगा, ये सोच रहा होगा पानी मीठा है, खट्टा है, गंदा है, मुझे सांस चाहिए था सांस, और कुछ नहीं सोच रहा था, सोच रहा होगा कितना पागल है, कितना बदतमीज है, उठ के 2 थप्पड़ मारूंगा, नहीं मुझे सांस चाहिए था और कुछ नहीं, सांस चाहिए था, ईश्वर चाहिए, ईश्वर भी मुझे सांस चाहिए था। बोला देखो, जिस दिन उतना तड़प तेरे अंदर हो जाए जितना तड़प इस नदी के अंदर तो सांस के लिए तड़प रहा था, जिस दिन उतना तड़प तेरे अंदर हो जाए साक्षात ईश्वर तुझे दिखाई देंगे। पर वो तड़प तो पैदा करो, वो इच्छा तो पैदा करो, वो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर तो पैदा करो। इच्छा ही नहीं तो कहां से मिलेगा? ईश्वर हमें देखना चाहते हैं, पर सचमुच ईश्वर आ जाए तो हम भाग जाएंगे। ऑफिस लेट हो रहा है, बच्चे को लेकर पार्क जाना है, तो हमारा प्रायोरिटी कुछ दूसरी है। भक्ति जब प्रबल होगी तो स्वाभाविक रूप से ईश्वर दिखेगा। फिर भी सुनिए, भक्ति प्रबल होने से ईश्वर आप पर विशेष कृपा करके दर्शन नहीं देगा। ईश्वर तो तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर है। जिस दिन तड़प होगा उस दिन मुझे अपने अंदर से वो एहसास होने लगेगा कि मेरे अंदर वो ईश्वर कैसा है। जैसे ध्रुव को लगता है, जो प्रहलाद को लगता है। सज्जनों माताओं, भक्ति प्रेम का विषय है, भक्ति दिल का विषय है, भक्ति डूबने का विषय है। अगर हम डूब नहीं पाए, अगर हम उसमें तड़प नहीं पैदा कर पाए, उसमें अगर हमारे रोए रोए में वो भावना खड़ी नहीं हुई, तो फिर भक्ति हिपोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वो पब्लिक को दिखाने के लिए हो जाता है। आप हजारों माला डालें, चोटी रखें, क्राश डालें, टोपी पहने, ये नौटंकी हो जाती है। सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए अपने आप को बड़ा स्वामी साधु सन्यासी बनाने के लिए होश भक्त हो जाता है। अंदर उतना ही खोखला है, अंदर उतना ही बकवास है जैसे किसी नास्तिक में होता है, उतना हमारे। भक्ति जिस दिन सचमुच होगी, सचमुच ईश्वर को आप एहसास करेंगे, अपनी शक्ति को एहसास करेंगे, अपने स्वरूप को एहसास करेंगे। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगले रविवार से हम ईशावासी उपनिषद की चर्चा करेंगे, आप सब जरूर आइए उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आरती होगी आप।